मेरे बहुत बहुत प्यारे साथियों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, आज 3 अप्रैल 2017 है और आज के इस afis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आप सबके साथ ही मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन पांच नौजवान साथियों का भी, जिन्होंने एकेडमी की अक्टूबर नवंबर में होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन पांच साथियों के नाम हैं सुशील पाल, आप अंबेडकर नगर उत्तर प्रदेश से हैं, राजेश कुमार, आप संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश से हैं, आयुष सिंह, आप सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से हैं, मोहम्मद मुदस्सर, आप लखनऊ उत्तर प्रदेश से हैं और अंकित सिंह, आप छपरा बिहार से हैं। तो सुशील, राजेश, आयुष, मोहम्मद मुदस्सर और अंकित, आप सभी पांचों साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों, अब हम लोग आते हैं आज के न्यूज एनालिसिस पर। लेकिन फ्रेंड्स, आज के लिए मैंने थोड़ा सा एक नए तरीके से आपके सामने पेश होने का फैसला किया है। आप बताएंगे कि मेरा यह फैसला कितना सही रहा, कितना गलत रहा, इसके लिए मैं आपके ईमेल का इंतजार करूंगा। मैंने सोचा कि ठीक है, कभी कभी कुछ कुछ बदलाव होते रहने चाहिए ताकि आपकी भी जरा मोनोटोनस कम हो, और अगर मोनोटोनस निरसता कम हो ना भी हो तो कम से कम रोचकता बढ़े, थोड़ा सा टेस्ट बदले। और डेफिनेटली वो जो टेस्ट होगा वो इस पाचन क्रिया को खराब करने की कीमत पर नहीं होगा कि मैं आपको फालतू की चीजें परोसूं जिसका कोई संबंध सिविल सर्विस से नहीं होगा। इस रूप में मैंने थोड़ा सा नया निर्णय लिया है कि आज मैं आपसे जो अभी अभी मेंटल हेल्थ केयर बिल जो पारित हुआ है हमारे पार्लियामेंट से, इसके बारे में थोड़ा एक्सक्लूसिव बात करूं। ये फैसला इसलिए लिया है कि मुझे ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है सिविल सर्विस के लिहाज से। एक तो आपने देखा कि नेशनल हेल्थ पॉलिसी हमारी अभी कुछ दिनों पहले ही डिक्लेयर हुई है और उसी में मेंटल हेल्थ केयर की बात भी थी और उसी को लेकर के फिर ये पारित किया गया है। तो मैं इस पर बाद में आऊंगा, मैं अभी आपको केवल सूचना दे रहा हूं। पहले मैं थोड़ी सी न्यूज एनालिसिस पर आ जाऊं, अखबारों पर और रेडियो न्यूज पर। तो रेडियो न्यूज फ्रेंड्स आपने सुनी होगी, रेडियो न्यूज में कोई खास ऐसी खबर नहीं है, लेकिन यह है कि अगर मैंने ये मेंटल हेल्थ केयर बिल की बात नहीं ली होती तो फिर हम किसी न किसी टॉपिक को लेकर के डेफिनेट उस पर चर्चा करते और वो भी टॉपिक इम्पॉर्टेंट ही होता। उसमें केवल एक न्यूज की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा और वो है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर देश की सबसे लंबी टनल यानी कि सबसे लंबी सुरंग का कल उद्घाटन किया है, जिसका नाम है चनैनी नाशरी। ये नाम आपको याद होना चाहिए, आपके दिमाग में कहीं दर्ज हो जाना चाहिए, चनैनी नाशरी, जो लगभग 9.25 किलोमीटर लंबी है, देश की सबसे लंबी सुरंग है और इससे जम्मू और श्रीनगर के बीच की लगभग 31 किलोमीटर जो दूरी है वो कम हो जाएगी, 31 किलोमीटर का जो फासला है वो कम हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इससे डेली लगभग 27 लाख रूपये का जो पेट्रोल है, 30 लाख कह लीजिए मोटे 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 तौर पर की बचत होगी, 30 लाख रुपए पेट्रोल प्रतिदिन की बचत होगी। और आपको मालूम है पेट्रोल की बचत की बात क्यों की जा रही है या डीजल की बचत की बात क्यों की जा रही है, आपको मालूम है कि हम पेट्रोल और डीजल इस तरह के पेट्रोलियम पदार्थों के मामले में आत्मनिर्भर नहीं है। आत्मनिर्भर क्या मतलब, हम तो लगभग 75% इम्पोर्ट ही करते हैं, तो हमारे जो फॉरेन करेंसी है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा तो केवल इनके भुगतान में चला जाता है। इसलिए आप देख रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर जो दूसरे रिसोर्सेज हमारे एनर्जी के उस पर इतना जोर दे रहे हैं और 2022 तक हमने 1.75 गीगावाट बिजली केवल ग्रीन एनर्जी के रूप में पैदा करने का एक टारगेट बनाया है। तो दोस्तों, एक छोटी सी खबर थी, मुझे नहीं लगता है कि सिविल सर्विस में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन ये जरूर है कि स्टेट सिविल सर्विस या दूसरे जो कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन है, हो सकता है कि उसमें पूछ लिया जाए। और उसका कारण यह कि चूंकि जम्मू कश्मीर से संबंधित है और इसके दूसरे एस्पेक्ट इंपॉर्टेंट है जिसमें मैं खासकर आपके ग्रीन एनर्जी को लेकर के स्पेसिफाई करना चाहूंगा, जो जिसकी चर्चा भी मैंने की, इसलिए मुझे लगता है कि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकता है। हाँ, जब आप एनर्जी के बचत की बात करेंगे सिविल सर्विस में, अगर कोई क्वेश्चन आ गया तो आप इसको कंटेंट के रूप में डाल सकते हैं कि इस तरह से अगर किसी तरह से हम दूरियों को कम कर सके तो पेट्रोल बचेगा। इसी तरह से वाटरवेज को लीजिए, अभी की जो सरकार है ये जलमार्ग विकसित करने पर बहुत ज्यादा जोर दे रही है, और अगर हम जलमार्ग विकसित कर सके तो फिर से सड़कों पर भीड़ भाड़ भी कम होगी और नो डाउट कि पेट्रोलियम पदार्थों की बचत तो होगी ही। तो दोस्तों, ये एक खबर थी। इसके बाद दूसरी छोटी खबरें थी, वो आप लोगों ने सुनी ही है। जैसा कि मैं बता भी चुका हूं कि सैटरडे संडे को टीवी न्यूज में कुछ ऐसा विशेषकर नहीं रहता, लेकिन कभी कभी आ भी जाता है। एक बात मैं डेफिनेटली आपसे फिर से कहना चाहूंगा मित्रों, कि जब मैं कहता हूं कि कुछ विशेष नहीं रहता है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसे देखना सुनना छोड़ दें। मेरा मतलब है कि उस पर कोई बहुत ज्यादा आपको चीजें नहीं मिलेंगी, लेकिन आपको अपनी कंटिन्यूटी को मेंटेन करना है, या इसे यूं कह लीजिए कि आपको अपने अनुशासन को बनाए रखना है, और वह अनुशासन है रेडियो और दूरदर्शन के न्यूज को सुनने संबंधी अनुशासन। तो फ्रेंड्स, आइए अब मैं आता हूं मेंटल हेल्थ केयर बिल 2016 पर, जिसे अभी अभी कुछ ही दिनों पहले पिछले सप्ताह लोकसभा ने पारित किया है। इसके दो एस्पेक्ट हैं फ्रेंड्स, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला तो यह है कि अपने आप में ही जो आपका जो फर्स्ट और सेकंड, स्पेशली जो सेकंड पेपर है जनरल स्टडीज का मेंस, उसका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये हो सकता है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हेल्थ से रिलेटेड है और हेल्थ का जो इश्यू है वह आपके सेकेंड पेपर का पार्ट है। आप देखेंगे सिलेबस को तो वहां आपको दिखाई दे जाएगा। सोशल वेलफेयर का पूरा जो टॉपिक है वो आपके जनरल स्टडीज मेंस के सेकेंड पेपर का हिस्सा है। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बार बार जो कहता हूं कि सिलेबस पर आपकी बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए, वो मैं इसीलिए कहता हूं क्योंकि अगर आपको सिलेबस पर अच्छी पकड़ है तो होगा क्या कि जब भी आप अखबार में, न्यूज में कोई तथ्य सुनेंगे, अखबार में पढ़ेंगे, भले वो छोटा सा क्यों ना हो, तो जो आपके दिमाग में चुंबक के रूप में सिलेबस मौजूद है, यस चुंबक के रूप में, मैं जानबूझ के चुंबक शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं कि आपके दिमाग में मैग्नेट है, वो मैग्नेट कौन सा है, आपका सिलेबस है। तो जैसे ही वो अखबारों में, न्यूज में कहीं चीज देखेगा, पढ़ेगा, सुनेगा, तो आपके दिमाग का चुंबक उसे तुरंत अपनी तरफ खींच लेगा कि अरे ये तो मेरे काम का, ये तो आयरन का टुकड़ा है, आयरन का पार्टिकल्स, और तुरंत खींच लेगा। और ये आपके अंदर आप देखेंगे कुछ दिनों में कि कितनी मजबूती आ जाएगी सिविल सर्विस को लेकर के। तो फ्रेंड्स, ये जनरल स्टडीज मेंस के सेकेंड पार्ट, सेकेंड पेपर का हिस्सा है, और साथ ही ये फोर्थ पेपर का भी हिस्सा है। फोर्थ पेपर का संबंध आपको मालूम है एप्टीट्यूड और इन सबसे है, और फोर्थ पेपर का हिस्सा इसलिए है क्योंकि एक उसमें देखिए कि अच्छी चीजें दी हुई है, नैतिकता है, सत्यनिष्ठा है ना, ईमानदारी है, ये सारी चीजें उसमें दी हुई है, लेकिन उसका एक सेकेंड पार्ट भी है जो उसमें मेंशन नहीं किया हुआ है। जो आप इमोशनल इंटेलिजेंस वाला पार्ट देखेंगे तो हालांकि उसमें कहीं डिप्रेशन इन सब की चर्चा नहीं है, मानसिक बीमारियों की चर्चा नहीं है, लेकिन आप दूसरी तरफ देखेंगे कि हमारे पास हैप्पीनेस के इंडेक्स आते रहते हैं। अभी कुछ ही दिनों पहले यूएनओ का हैप्पी इंडेक्स आया है, आपको मालूम है, जिसमें भारत करीब 121वीं 22वीं कुछ ऐसी पोजीशन पर है, 150-155 देशों में, तो भारत काफी नीचे है। मतलब भारत जैसा देश जिसे हम आध्यात्मिक राष्ट्र कहते हैं, जो बहुत ही सहनशील राष्ट्र है, वो अगर हैप्पी इंडेक्स में 155 देशों में 122वें 23वें 21वें नंबर पर आ जाए तो यह थोड़ी सी चौंकाने वाली बात है। अविश्वसनीय तो है, लेकिन आप अविश्वास करेंगे भी कैसे, क्योंकि उसमें जो मापदंड दिए गए हैं वो मापदंड ऐसे नहीं है जिन्हें आप हैप्पीनेस से अलग करके देख सकें। हैप्पीनेस ठीक है, एक आंतरिक अनुभूति जरूर है, लेकिन क्या आंतरिक अनुभूति पर बाहरी वातावरण का प्रभाव नहीं पड़ता? अगर मान लीजिए समाज में बहुत बेईमानी है, बहुत असुरक्षा है, मारपीट चीख चिल्लाहट मची हुई है, तो वहां आदमी खुश कैसे रह सकता है? अब ठीक है, आध्यात्मिक पुरुष, संत महापुरुष रह लेंगे, लेकिन आम आदमी तो नहीं रहेगा ना, क्योंकि वो तो इनसे प्रभावित होगा। तो जो हमारा भौतिक वातावरण है, कहीं ना कहीं उसका संबंध हमारे आंतरिक भावों से पड़ता है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि नहीं, जो हैप्पीनेस के जो पैमाने हैं, जो वेस्ट के या यूएनओ के, वो चूंकि भारत के पक्ष में नहीं है इसलिए हम इतने नीचे, अदरवाइज तो हम बड़े हैप्पी हैं। नो फ्रेंड्स, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और ये बात मैं आपको जानबूझकर इसलिए कह रहा हूं ताकि आप में वो एनालिसिस पावर डेवलप हो सके, अदरवाइज तो फिर हम या तो उसका समर्थन कर देंगे या उसको आउटराइट रिजेक्ट कर देंगे। तो फ्रेंड्स, तो इसी इन्हीं सब स्थितियों को लेकर के एक अलग से बिल लाया गया। ऐसा नहीं कि ये बिल कोई बहुत ही क्रांतिकारी बिल है या इस पर पहली बार ही सोचा गया है, काफी समय से इस पर सोचा जा रहा था और इससे पहले भी नेशनल मेंटल हेल्थ पॉलिसी 2014 में बकायदे आ चुकी है। नेशनल मेंटल हेल्थ पॉलिसी आई थी 2014 में, 3 साल पहले। तो मतलब हमारे लोगों ने सोचना तो शुरू कर दिया था। लिबरलाइजेशन के बाद ये जो हेल्थ प्रॉब्लम है ये बहुत ज्यादा बढ़ी है और उसके पीछे है महत्वाकांक्षाएं, भौतिकता का बढ़ना, उपभोगवाद की बहुत ज्यादा स्वीकृति, ये सारी चीजें हैं जो व्यक्ति को डिप्रेशन में ला रही हैं। और फिर जीवन शैली तो खैर है ही, तो अब इसके लिए बढ़ते बढ़ते इसकी स्थिति इतनी खराब होती जा रही है कि सरकार को नेशनल हेल्थ पॉलिसी से अलग हटकर मेंटल केयर बिल लाना पड़ा, मेंटल हेल्थ केयर बिल लाना पड़ा। दोस्तों, इसका मेन उद्देश्य क्या है? केवल यह है कि जो व्यक्ति मानसिक रोगों से पीड़ित है, किस तरीके से उसे, देखिए यहां मैं जो बात कहने जा रहा हूं वो आप अगर नेशनल हेल्थ पॉलिसी से जोड़कर देखेंगे तो बहुत ज्यादा सिमिलरिटी मिलेगी, उनके बहुत ज्यादा समानांतर बातें मिलेंगी। तो पहली बात तो यह है कि उनको सुविधाएं प्रोवाइड की जाए कि वो अपना इलाज करा सके। और इसमें एक बात ध्यान रखिएगा कि ये जो सुविधाएं हैं जो पॉलिसी में दी गई है, ऐसा नहीं कि केवल बिलो पॉवर्टी लाइन के लिए है, सभी सिटीजन्स के लिए, देश के सभी नागरिकों को इलाज उपलब्ध कराया जा सके और सही सस्ता इलाज उपलब्ध कराया जा सके, ये नेशनल हेल्थ पॉलिसी में भी है। गोपनीयता का अधिकार, सीक्रेसी, आप जानते हैं, जैसे एड्स बिल भी अभी आया है, रिवाइज बिल, संशोधन विधेयक आया है, आपको ध्यान होगा ये भी 10-15 दिन पहले ही आया है। देखिए, मैं जानबूझकर के मित्रों इनकी चर्चा इसलिए कर रहा हूं ताकि सिविल सर्विस की तैयारी करने का आपको एक पैटर्न पता लग सके कि हम किधर बढ़ रहे हैं, डायरेक्शंस क्या हैं विधेयक के, सत्ता के, नागरिक अधिकारों के। तो आप एड्स संशोधन विधेयक में भी पाएंगे कि गोपनीयता का अधिकार दिया गया है कि बिना उनकी स्वीकृति के उनका नाम उजागर नहीं किया जा सकता। मेंटल हेल्थ केयर बिल में भी यही कहा गया है, क्योंकि सामान्यतः यह देखा गया है भारतीय समाज में कि अगर किसी को पता लग गया कि ये मानसिक रूप से थोड़ा सा पीड़ित है, परेशान है, मानसिक बीमारी है, तो लोग सीधे सीधे आम लोग कह देंगे कि पागल हो गया है, तो समाज से एक तरीके से बहिष्कार उनका होने लगता है, उनसे लोग कटने लगते हैं। तो इसलिए गोपनीयता को इसके अंतर्गत रखा गया है। ये भी किया गया है कि जो पेशेंट होंगे उन पेशेंट के राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाएगा, उनके अधिकारों की रक्षा की जाएगी। और रक्षा की कैसे जाएगी, देखिए 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं। नंबर 1 कि जो पेशेंट होगा, जो मानसिक पेशेंट होगा, वो अपना एक गार्जियन अपॉइंट करेगा कि भाई मेरी देखरेख ये करेगा, पहली बात। दूसरा, वो ये भी बताएगा कि मैं इस तरह से इलाज चाहता हूं। जैसे आपने सुना होगा कि इलेक्ट्रिसिटी के शॉक बहुत दिए जाते हैं जिनको भी मानसिक बीमारी होती है, तो बिजली के झटके दिए जाते हैं, उससे उनको बहुत ज्यादा यातना होती है। बच्चों को तो आप दे ही नहीं सकते बिजली के झटके, ये पूरी तरह से इस बिल में कहा गया है। लेकिन अगर कोई पेशेंट भी कहता है कि मुझे नहीं चाहिए, तो आपको उसकी बात मानना पड़ेगा, मतलब उसका इलाज किस तरीके से हो, यानी कि दवाई कौन कौन सी हो, क्योंकि यातनाओं से जुड़ा हुआ भी इलाज होता है। तो अगर वो उसके लिए मना करता है तो वह भी उसके अधिकार में है कि आप उसे रोकेंगे, मतलब उसकी जो भावनाएं हैं उसका सम्मान करेंगे। एक जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, वो ये है कि एक बोर्ड बनाया गया है जिसका नाम है मेंटल हेल्थ रिव्यू बोर्ड। मेंटल हेल्थ रिव्यू बोर्ड, वो जो बोर्ड है वो पेशेंट के जो राइट्स, अगर उसको कुछ शिकायत है इलाज से, तो उनको प्रोटेक्ट करेगा, उनको सुनेगा और बकायदे अपना निर्णय सुनाएगा। और आप देखिए कि जिस डॉक्टर या जिसके प्रति भी अपराध सिद्ध होगा, अगर पहली बार अपराध सिद्ध होता है तो उसके लिए 6 महीने की जेल और 10 लाख रुपए की सजा है, और अगर दोबारा होता है तो 2 साल की जेल और 50 लाख रुपए की सजा, मतलब इतना ज्यादा उसको बढ़ा दिया गया है। तो आपने देखा, मैंने जानबूझ करके खासकर पेशेंट के जो राइट्स हैं उनकी बात आपको बताई है, क्योंकि सिविल सर्विस में इसी तरह से अलग से टुकड़ा उठा करके क्वेश्चंस पूछते हैं, आपसे सीधे सीधे बिल्स के बारे में नहीं पूछेंगे। मतलब पूछ सकते हैं कि किस तरह से मेंटल हेल्थ केयर बिल एक तरह से मानवाधिकार की दिशा में उठाया गया ही एक कदम है। तो आप सीधे सीधे जो पेशेंट है उनको मानव मान लीजिए, मानवाधिकार के अंतर्गत उनकी इन बातों को कर लिख दीजिए, आपका आंसर कंप्लीट हो गया। अगर आप पूरा बिल उठा करके लिखने लगेंगे तो बात गड़बड़ हो जाएगी। इसमें एक और भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो एक कह लीजिए कि नया है, बिल्कुल नवोन्मेष है, और उसमें यह किया गया है कि अगर कोई इस तरह का व्यक्ति सुसाइड की कोशिश करता है तो उसे अपराध नहीं माना जाएगा। अभी तक अटेम्प्ट ऑफ मर्डर के अटेम्प्ट ऑफ मर्डर जैसा माना जाता था, और उसको आईपीसी की धारा 309 के तहत सजा भी दी जा सकती थी, मतलब अपराध ही था। अब यह माना गया है कि चूंकि ये अपने आप में बीमारी है, उस बीमारी के तहत अगर कोई इस तरह की कोशिश करता है तो उसे अपराध नहीं माना जाएगा। इसका मतलब है कि उसे और ज्यादा केयर की जरूरत है, उसे और ज्यादा सुविधाएं प्रोवाइड की जाए और उसकी कोशिश की जाएगी। दोस्तों ये बिल के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे, और इस पर आपको अखबारों में मैंने इससे पहले काफी क्लिपिंग्स प्रोवाइड की हैं, तो प्लीज आप वो क्लिपिंग्स देख लें। आप देखते भी आ रहे होंगे, हो सकता है कि आगे भी इस पर कुछ आर्टिकल्स आए, तो उस आर्टिकल्स के मदद से आप इस टॉपिक को मैं सजेस्ट करूंगा कि अपेक्षाकृत थोड़ा बेहतर तरीके से आप तैयार कर लें। जो सिचुएशन है फ्रेंड्स हमारे यहां भारत में जो मेंटल हेल्थ की, वो मैं थोड़ी सी बातें आपको बता दूं कि हमारे यहां लगभग आप ये समझ लीजिए कि 5 से 6% लोग मेंटल हेल्थ से पीड़ित हैं, जिसमें करीब 1.25% लोग तो जो सीवियर मेंटल प्रॉब्लम होती है, जिसको सिजोफ्रेनिया आपने सुना होगा या बायोपोलर डिजीज सुना होगा, इससे पीड़ित हैं। और खासकर जो डिप्रेशन जिसको कहते हैं, डिप्रेशन से पीड़ित लोगों की संख्या हमारे यहां बहुत ज्यादा है। अनफॉर्चुनेट इसमें दो पार्ट है, पहली बात तो यह है कि जो साइकेट्रिक्स होते हैं, जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, इनकी उपलब्धि भारत में नहीं के बराबर है। मतलब समझिए कि 0.3 1,00,000 लोगों के पीछे 0.3, यानी कि इसको हम अगर हम कन्वर्ट करें तो आप कह लीजिए कि 3,10,000 के पीछे एक साइकेट्रिक है, 3,10,000 नागरिकों के पीछे एक साइकेट्रिक है, जबकि चाइना में यही 1.7 है। तो आप देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा कमी है। दूसरा यह कि जिनको इस तरह की बीमारी होती है वो डॉक्टर के पास जाना नहीं चाहते, क्योंकि एक सोशल स्टिग्मा इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में वो कड़नी काटते हैं और बीमारी बढ़ती चली जाती है। ये दो हमारे यहां मेंटल हेल्थ की दिशा में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एक तो आपने सीधे सीधे सोशल प्रॉब्लम देख लिया, दूसरा आपने इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित प्रॉब्लम देख लिया कि हमारे पास डॉक्टर्स वगैरह की काफी कमी है। तो फ्रेंड्स ये मैंने आपको मेंटल हेल्थ केयर बिल के बारे में कुछ पॉइंट्स दिए हैं, और मुझे उम्मीद है कि इसका सहारा लेकर के आप और दूसरों की मदद से काफी अच्छे से इस टॉपिक को तैयार कर लेंगे। तो मित्रों अब मैं आता हूं अंतिम चरण, ईमेल के चरण पर। मुझे एक मेल मिला है घनश्याम का, जो हिमाचल प्रदेश से हैं। उन्होंने एक सूचना दी है, ये सूचना आप लोगों के लिए उपयोगी हो सकती है, कि लोकसभा चैनल पर शाम को 7 बजे से 8 बजे तक एक प्रोग्राम आता है लोक मंच, उसमें किसी एक टॉपिक को लेकर के अच्छे से डिस्कस किया जाता है। लोक मंच 7 बजे से 8 बजे लोकसभा चैनल पर, तो आप लोग उसका भी उपयोग कर सकते हैं। तो सभी ईमेल लिखने वाले अपने दोस्तों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, उन्हें धन्यवाद देता हूं, और उन्हीं में से मित्र कुछ के नाम हैं: श्रेयांश साहिल, सुजीत सोनी जयनगर झारखंड से, सिमरनजीत सिंह लुधियाना पंजाब से, हिरेन सोजित्रा राजकोट गुजरात से, चंद्रशेखर यादव, सोनल कहालकर महाराष्ट्र से, नीरज राय दरभंगा बिहार से, रजत बोलपुर से, उत्कर्ष राज रांची झारखंड से, सचिन कुमार सिंह दुर्ग छत्तीसगढ़ से, हनी सिंह श्री यादव, उषा नयन हरियाणा से, निपुण शारदा, मनीष दुबे लखनऊ से, हेमंत सिंह जौनपुर उत्तर प्रदेश से, आकाश सनोदिया, अमित कुमार, जतिन जैन जयपुर से, धनंजय त्रिपाठी लखनऊ से, रजनीश कुमार सिंह बिहार से, और शुभम वर्मा मेरठ उत्तर प्रदेश से। आप सबका भी बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों इसी के साथ ही एक सूचना है कि चूंकि कल गजेटेड हॉलीडे है रामनवमी के अवसर पर, तो कल यह डेली ऑडियो लेक्चर अवेलेबल नहीं होगा। हम सबकी तरफ से आप सभी को रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, اور دوستوں پرسوں پھر ملاقات ہوگی. اب اسی کے ساتھ ہی آج کے اس ڈیلی آڈیو لیکچر کو یہیں سماپت کرنے کی اجازت چاہتا ہوں. میرا ابھیوادن سویکار کریں. نمسکار.